मुरली है 30/12/85 और हेडिंग विशाल बुद्धि की निशानियां। तो सभी हम अपने अपने बुद्धि भी चलाएंगे। वर्तमान समय अनुसार हम जो देख रहे हैं संसार का जो परिदृश्य है, जिस मार्ग से संसार गुजर रहा है, परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके लिए भी बाबा ने इस मुरली में भी इशारे हैं पहले से ही कि संसार की आत्माएं कैसे व्यवहित हो रही हैं और आप कौन सी प्रवृत्ति में व्यस्त हो, वो भी बात है। क्योंकि दिन प्रतिदिन तो परिस्थितियां विकराल रूप धारण करेंगी, कम नहीं होंगी। बाबा की अनेक ऐसी अव्यक्त वाणी हैं या साकार मूल्य में सुनते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करने की कितनी जरूरत है। बहुत ही मजबूत होने की जरूरत है। जैसे कल की मूल्य में था ना, बहुत आफतें आएंगी, व्यापारियों की सांसें कहाँ होंगी, मुट्ठी में होंगी। तो आज के हालात जो है संसार के, जिसके लिए किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई वायरस आ जाएगा। अब इस वायरस का इतना प्रभाव है, पूरी मानवता के लिए एक भयंकर संकट है। हालांकि प्रयास तो अपने अपने स्तर पर सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखो पाश्चात्य संस्कृति में वो इतना उस संस्कृति के अधीन है कि नियमों का सोशल डिस्टेंस जो भी इस कोरोना संकट से बचने के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वहां की मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर जनसंख्या में है, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी कितना कंट्रोल में है। क्योंकि बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में बताया था, भारत जो है अविनाशी खंड है, भगवान की अवतरण भूमि है, ये भारत की महिमा है। तो भारतवासियों की मेंटेलिटी एक माँ के समान है, इसलिए भारत माता कहा जाता है। और भारतवासी जो है पूरे वर्ल्ड के लिए बाबा ने जो हमको चुना है तो पूरे संसार को रास्ता दिखाने वाले हैं, इसलिए भारत को विश्व गुरु माना जाता है। आज के अगर स्पिरिचुअलिटी के तरीके से देखें तो भारत सबसे ऊंचा है, और ऐसी परिस्थिति आ रही कि भारत हर क्षेत्र में अभी सबके सामने प्रथम श्रेणी में दिखाई देगा। क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष तो भारत से ही होना है, विदेश से भले होगा लेकिन लाइट हाउस तो मधुबन है। मधुबन से बाबा ने कहा ये शोरूम है, एक लाइट हाउस है, चैतन्य लाइट हाउस है, माइट हाउस है, पावर हाउस है, मॉडल है एक एक, एक जो यहाँ ब्राह्मण आत्मा है बहुत मूल्यवान है। बाबा ने मधुबन को भी याद किया, किसने जो मधुबन निवासी बना देता है। तो हम देखते हैं जो मधुबन वालों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कई सारे मधुबन ऐसे हैं, मधुबन वासी ऐसे हैं जिनके अंदर वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ है, जिनके अंदर अनगिनत विशेषताएं हैं, जो त्याग तपस्या की मूर्त हैं। क्योंकि होता है ऐसे कि हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण है हद का दृष्टिकोण है, लेकिन बाबा ने इस मुरली में हमको हद से निकाल बेहद में ले जाने का प्रयास किया कि तो सफलता का आधार भी बेहद है। तो मधुबन में जो रहने का है एक चांस मिला है, ये हम सबको ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम देखते हैं कई मधुबन वाले हैं इतने तपस्वी है जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमने बड़ा नजदीक से भी देखा उनको, उनके कमरों में भी देखा है, उनका कोई वेस्टेज नहीं जाता, कोई उनका व्यर्थ समय नहीं जा रहा, कोई इसी तरह सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। कितने साल हो गए, एक बार घर छोड़ा तो वो घर भी नहीं गए, कई ऐसे भी मधुबन वाले। इसलिए बाबा ने एक मुरली में ऐसे भी कहा था, डेट तो हमको मालूम नहीं है, कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन आत्माओं के कारण वातावरण शक्तिशाली बनता है, भले हम ऊपर से देखते हैं लेकिन अंदर में किसकी साधना कैसी कैसी चल रही है वो हमको दिखाई नहीं देता। या कई बार ऐसे भी होता है कि हम वर्तमान को देखते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, लेकिन उसने पूर्व में इतनी उसने पुण्य की पूंजी जमा की है, उसने इतनी साधना की है कि उसका बहुत जमा है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था शांतिवन में, हमने सुना डायरेक्ट शांतिवन में अव्यक्त वाणी, तो बाबा ने कहा था नयों के लिए, एक बाबा ने संकेत दिया था कि नए ये नहीं सोचे कि पुराने ऐसा करते हैं। बाबा ने कहा पुराणों का बहुत जमा है और वो अंत में ऐसा जंप देंगे, एक जंप में आगे बढ़ जाएंगे और तुम लोग देखते रह जाएंगे। तो अंत में बाबा को हम सबसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए बाबा ने आज के मूल्य में विशेषता बताई। बाप की विशेषता क्या है? ना उम्मीदवार आत्माओं में उम्मीद पैदा करना, उम्मीद प्रारण उनको। तो हम एक 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 ब्राह्मण आत्माओं के बहुत बड़े दायित्व तो हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हैं, जिम्मेवारी का बाबा ने इस मुरली में जिक्र किया है। तो हमको इन चीजों से देखना है। तो ये जो मुरली है बहुत महत्वपूर्ण मुरली है। वैसे तो बाबा की हर मुरली, जितना हम मुरलियों को पढ़ते जाते हैं तो उनका महत्व मालूम होता है। अगर हम एक बार सुनते हैं ना तो जीवन में कोई परिवर्तन इतने जल्दी होने वाला नहीं है। एक मुरली को कई बार पढ़ो तो धीरे धीरे रस बैठने लगता है, नहीं तो इधर से आते माँ बाप के उधर से चले जाते हैं, फिर एक वो सामान्य जीवन बन जाता है।
ये
जैसे
रोज आता
संसार
रहता है
में
आज
पंडित लोग
आजकल
होते हैं,
बाबा ने मनन करो नवीन का
नवीनता लाओ। हाँ, हर चीज के लिए नवीनता चाहिए, इसलिए मुरली तो एक ऐसी चीज है कि जो हम दादियों के मुख से भी कई बार सुनते थे, क्योंकि दादियों से तो हम बहुत बार मिले हैं। रतमुनि दादी हमको 1.5 1.5 घंटा बैठा कर कितनी रात के समय, बड़े दादी उनके साथ बैठे, आदि प्रकाश मणि जी, जानकी दादी के पास इंद्रप्रस्थ में कितना समय रात को बैठे रहते थे उधर। तो उनके जो नजदीक है, हमने देखा उनको, आज की डेट में भी उनको जो पढ़ाई का शौक है, मानना पड़ेगा वो आज की डेट में भी दादी जो मुरली पढ़ती हैं वो बड़ा गहराई से पढ़ती हैं, और आज की डेट में उनको लगता है जैसे हमको नवीनता अनुभव हो रही है। नहीं तो उनको 84 ईयर हो गए, इतने वर्षों से मुरलियां सुन रहे हैं, फिर भी उनको नवीनता का अनुभव हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर की गहराई में जाना बड़े लंबे समय का प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए उसके लिए, तुरंत नहीं होगा काम।
निरंतर
इसलिए निरंतर और सतत अभ्यास चाहिए। पढ़ाई जो है ये वास्तव में हमारी ब्राह्मण जीवन की ऑक्सीजन है। अगर हम पढ़ाई नहीं पढ़े हम जी नहीं पाएंगे सचमुच। और पढ़ाई की आदत डालने के लिए जबरदस्ती भी करना पड़ता कई बार, क्योंकि मन सहज रूप से मानता नहीं है। मन को ऐसे संस्कारों की आदत पड़ी है कि ना चाहते भी दूसरे जो हमारे पुराने आते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार है, वहां चला जाएगा। हमारे पास समय भी है, संसाधन भी सारे मौजूद हैं, किताबें भी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मन ऐसा कोई बहाना क्रिएट कर लेगा अंदर से कि पढ़ाई की तरफ हमारा मन ही नहीं जाएगा। पुराने स्वभाव संस्कार अंदर से इतने पक्के हुए, मजबूत हुए, इसलिए संस्कारों को परिवर्तित करने का एक ही माध्यम है और वो है योग। लेकिन योग में भी रुचि बैठे उसके लिए मन बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, उसके लिए भी ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बिना ज्ञान के अगर हम योग करते हैं तो भी हमारा परिवर्तन नहीं होगा। योग में बैठे भी हमारा ज्ञान का चिंतन चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम एक ही पॉइंट पर स्थित हो के, वो तो हमारा होगा लेकिन वो ज्ञान पराकाष्ठा पर है, ज्ञान परिपूर्ण है, तो उसका परिणाम है कि हमारा एक बिंदु के ऊपर योग टिकेगा मन बुद्धि। अगर ज्ञान में कमी है तो हमारा मन बुद्धि भटकेगा। जैसे कोई भी हम मेथड, अगर कोई भी सोल्यूशन है पेपर का अपना, इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो हमको पूरा मेथड पता होता है उसका। अगर मेथड में ऊपर नीचे है पूरा मेथड पता नहीं है, 10% ही पता है या 50% ही पता, तो मन असमंजस में रहेगा, हमारा उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिस समय को हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना उस उतना समय हम कर नहीं पाएंगे, और करने के बाद भी हमको असमंजस बना रहेगा कि ठीक है या नहीं ठीक है, मन में द्वंद चलेगा। उसी तरह योग की भी पराकाष्ठा के लिए ज्ञान की संपूर्णता होना जरूरी है। और वास्तव में जब अंतिम अवस्था जो हमारी, जो बाबा कहते हैं कर्मातीत, वो अंत में हमारी इस योग के परिपूर्णता के बाद ही हमारी योग की अवस्था परिपक्व होगी। 1 सेकंड में जब हमारा मन जुड़ जाएगा उससे, अभी जुड़ नहीं रहा इतना, अभी तो केवल हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके गुणों के बारे में सोच रहे हैं, उसके रूप को देख रहे हैं, उसके उपकारों को याद रखें, लेकिन हमारा मन टच नहीं हो रहा अभी उससे। जब हमारा टच हो जाएगा 1 सेकंड में सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जैसे बिजली है, अब बिजली तो हमको दिख रही है, सारा ये है सब दिख रहा है, लेकिन जब झटका लगता तो कैसे खून चूस लेती है 1 सेकंड में, हमारे विकर्म भी ऐसे 1 सेकंड में दग्ध हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान, जो कहा जाता है ज्ञान के लिए 2 सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति। इसलिए ज्ञान, इसलिए बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ज्ञान का सागर हूँ, बच्चों को भी आप समान बनाने के लिए आया हूँ। अभी 4 5 दिन पहले मुरली थी साकार मुरली में। इसलिए ज्ञान तो हमारा रगों में समा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम व्यवहारिकता में आते हैं तो व्यवहारिकता में हमको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उसमें योग की जरूरत नहीं है इतनी। योग तो वास्तव में हमारे ज्ञान की समझ का परिणाम है। योग पहले नहीं लगेगा, पहले हम सेंटर में जाते तो योग थोड़ा करते डायरेक्ट, हाँ एक अलग बात है कि बचपन में बाबा बिना ज्ञान के बहुत सारे अनुभव करा देता, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वही हमको अनुभव होते नहीं है, क्योंकि फिर बाबा हमारी उंगली को छोड़ देता है कि हमको, मैंने तुमको भी रास्ते पर डाल दिया, अब तुम इस रास्ते पर क्या क्या परिस्थिति आएगी, उन परिस्थितियों को कैसे पार करना है, कैसे चलना, अब उस ज्ञान को समझो, और उस हर प्रश्न का उत्तर बाबा मुरली में देते हैं। इसलिए कुमारियों में आज कुमारियों के लिए बाबा ने कहा ना कि इस पढ़ाई का लक्ष्य भी नंबर वन हो। संसार की पढ़ाई है, संसार में पढ़ाई तो पढ़ते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में तुमको नंबर वन टोकरी नहीं उठानी है। कुमारी जीवन निर्दोष है, तुम्हारा जीवन ही टीचर बन जाए,
जीवन टीचर बन जाए,
जीवन ही पाठ पढ़ाने वाले बन जाए, पढ़ाना ना पड़े हमारे,
टीवी की तरह स्पष्ट।
हाँ इसलिए देखो जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ एक मधुबन जो हम देखते हैं कि ऐसा देखते हैं सेवा नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में महान परिवर्तन हुए हैं। कभी उनके मुख से हमने कोई अपशब्द निकलने देखे हैं, एकदम साइलेंस में है, ऐसी उनको सेवाएं हैं, पहरे की सेवाएं हैं जहां भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा एक ही स्थान पर यथार्थ, इतने वर्षों से हम देख रहे हैं एक ही स्थान पर एक्यूरेट बैठ के पहरा देना बहुत बड़ी सेवा है। एक व्यक्ति को आप एक ही स्थान पर बैठ जाओ, सबसे बड़ी एक हिसाब से संसार में सजा मानी जाती है, तो और वो व्यक्ति इतने सालों से एक ही स्थान पर है, एक्यूरेट दिनचर्या में आ रही है वो, तो हमको तो कईयों का जीवन हमको कई पाठ पढ़ा के चला जाता है, वो हमारी बातों से नहीं कोई समझेगा, लेकिन हमको देख के कोई जाएगा वो सारा, वो एक भी गुण अगर हमारे में से किसी ने उठा लिया तो समझो हमारा जीवन किसी को पाठ पढ़ा रहा है, अदरवाइज हम जितना मर्जी ज्ञान सुनाते रहे नहीं उठाएगा कोई
ज्ञान सुनने
को, क्योंकि अगर वो कोई गलती कर रहा है ना उससे भी सीख लेगा।
हाँ गलती करेगा उससे, दोनों चीजें उठाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में तो कदम कदम पर फूंक के चलना पड़ेगा, और सावधानियां तो हमको पहले जो ज्ञान में चलते हैं उनसे ज्यादा बरतनी पड़ती है, और उनके साथ हमको मीठा बनना है। कल की मुरली आने वाली, बाबा ने कहा तुम्हारा झाड़ ये बहुत मीठा है और कीड़े भी इसी को लगते हैं, देवता झाड़ इतना मीठा नहीं है, अब ये ब्राह्मण झाड़ मीठा है, वहां से तो उतरती गला है, अभी हम मीठा मीठे की परिपूर्णता को पा रहे हैं, इसको कीड़े भी लगते हैं, तो कौन से कीड़े हैं, हमारे जो विकारों को कीड़े अंदर में लगे हुए,
परिवार पे निश्चय पे मुरली चलाई थी,
हाँ वो सारी निश्चय पर मुरली थी 3 अप्रैल की, परिवार में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, बाप में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, ऐसे अनेक प्रकार के निश्चय हैं, तो हर परिस्थिति में भी निश्चय, हर बात में निश्चय चाहिए उसमें। तो ब्राह्मण परिवार तो सचमुच बहुत ऊंच परिवार है, इसलिए बाबा ब्राह्मण परिवार की महिमा करते हैं, लेकिन उस जैसे बाबा बच्चों की महिमा करते हैं हमको ही वही सीखना है। इस मुरली में जो एक बाबा ने बात कही, जो गोल्डन जुबली की तैयारियां की जा रही है, 1986 में गोल्डन जुबली मनाई गई संस्था की यज्ञ की, तो 85 में इसकी जो मुरली चली लास्ट में, तो कैसे कैसे तैयारियां करनी है, उसमें बड़ी सूक्ष्म बातें बताई। एक है कि स्थूल रूप से उसकी तैयारी, क्योंकि उसके लिए विशाल दिल भी होना चाहिए, विशाल रूपरेखा भी होनी चाहिए, विशाल उमंग साना भी चाहिए, लेकिन इसको विशालता नहीं कहेंगे, उसके साथ साथ नवीनता भी चाहिए। हाँ ये है कि आप आज्ञाकारी बन रहे हैं सेवा में, कि भाषण करने वाले भाषण करेंगे, भोजन बांटने वाले बांटेंगे, निमंत्रण उनको जिनको मिलेगा वो निमंत्रण का भी सेवा करेंगे, लेकिन उसमें हर एक में नवीनता चाहिए। नवीनता अर्थात जो हम कल थे
एक वर्ष पहले
थे, आज हम जो दिखें तो किसी को अलग दिखाई देना चाहिए कि पहले वाला व्यक्ति नहीं है, अभी दूसरा ये। अगर हमारे में आज ही पहले के स्वभाव संस्कार दिख रहे हैं कि ये तो पहले भी ऐसे था, अभी और ही बिगड़ गया है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, इसके बोल अभी भी कटाक्ष जैसे निकल रहे हैं, तो परिवर्तन कैसे हो। इसलिए बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिए, दो एग्जाम्पल दिए, इसमें मनसा सेवा का महत्व कितना बड़ा वो हमको थोड़ा दिल में लगा आज। मनसा सेवा के दो एग्जाम्पल दिए बाबा ने, कौन से एग्जाम्पल दिए कि दूर से बैठे भी वो बड़े जो VIP लोग होते हैं, तो अगर वो नहीं आ पाते हैं तो शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं, शुभ भावना शुभकामना भेजते हैं, तो कैसे अनुभव होती है। जैसे दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा, अभी संसार के VIP नहीं आ पाए, अगर ये अभी परिस्थितियां नहीं होती तो दादी जानकी तो अम्बेसडर थे, तो उनको तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी संस्कार किया जाता है, तो परिस्थितियां ऐसी होगी कि जो VIP लोग जो नहीं आ पाए तो उन सबके संदेश आए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, चाहे वो गवर्नर थे, कई मंत्री थे, सेंट्रल मिनिस्टर, सब कुछ वो संदेश आए
विदेश से, सारे
विदेशियों के आए। तो वो कैसे शुभ भाव है, उनके मन में स्नेह था, मना एक दादी जी के प्रति कितनी ऊंची उमेज है, उनकी संस्था के प्रति कितनी ऊंची उमेज है। तो उन पद चिन्हों पर ही हमको चलना है। उनका जीवन कैसे त्याग में तपस्या में रहे, जैसे दादी जी ने पहले क्या कहते थे कि मेरे अंतिम संस्कार में खर्चा नहीं होना चाहिए।
बहुत
बार इकोनॉमी का पाठ पढ़ा के, इकोनॉमी का पाठ तो हम दादी जी के कई एग्जाम्पल सुनते रहे, क्या हम सचमुच वो इकोनॉमिक जो पाठ हमने सुने क्या हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम इकोनॉमी कर रहे हैं, या हम ही अनेक संसाधनों को जुटाने का अनेक प्रकार के कोई योजनाएं बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं। अगर संसाधन हमारे पास आ रहे तो वो संसाधन सेवा में लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि उन संसाधनों के अधीन ही होकर हम काम करते रहे। का स्लोगन था ना अधिकार और अधीनता का, तो उनका जीवन तो दादी जाने की का या दादियों का जीवन बहुत त्याग में रहा है। कितने सच्चाई सफाई से उन्होंने बताया, हमने सुना दादी जानकी या दूसरे दादी भी कितने किलो किलोमीटर पैदल ही चलते थे रिक्शा का खर्चा भी बचाने के लिए, खर्चा ना हो। यहाँ तक कि हमने तो अभी टीचर बहनों को अभी भी देखा है कि कई सेंटरों पर तो इतना आवत होती नहीं थी आवक, बहुत कम स्टूडेंट, कैसे उन्होंने देखा हमने कि हमें या जो आने वाले दूसरे जिज्ञासु उनको भरपूर खिलाया लेकिन खुद नहीं खाया, खुद थोड़े में संतुष्ट हो गए। यह है बेहद की सेवा, अपनेपन की, जो बाबा ने कहा ना समीपता का अनुभव कराओ, आज के मूल्य में था। तो समीपता का अनुभव कैसे हुआ, ये जो संदेश शुभ भावनाओं का संदेश, दूर बैठे भी हमारे संकल्प उस आत्मा को अनुभव कराए, और वास्तव में अभी वो ही समय चल रहा है। अभी सेवा कैसे कर पाएंगे, आज एक वायरस आया जो पूरी मानवता के ऊपर संकट आ गया, कल को अगर ऐसा हो गया, मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक में वायरस घुस जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक ठप हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, कोई किसी के पास कुछ नहीं रहेगा।
नेट से
जो कल बाबा ने बोला ना कि नोट काम में नहीं आएंगे, क्या होगा,
नेट से जैसे वायरस आने लग गए तो नेट ही बंद करना पड़ेगा है ना,
करना नहीं पड़ेगा, बंद हो जाएगा,
हो जाएगा,
पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
गवर्नमेंट ऑथोरिटी से बंद करवा देगा
वो तो। आज की डेट में भी अगर आप बैंक में जाते हैं अगर वहां नेट नहीं चलता तो आपके भले करोड़ों रुपए बढ़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सब ऑनलाइन हो रहा है। और ये जो हमने आज सोचा भी नहीं था किसी मनुष्य ने कि ये वायरस ऐसा आएगा और इस संसार में इतनी हलचल,
शक्ति को विहीन कर दिया, तो शक्ति तक काम नहीं आ रही, वो परमाणु बम,
साइंस की शक्ति फेल हो
गई, तुम देखा ही नहीं रहा हो।
जो बाबा ने 1981 की मूल्य में कहा कि आगे चल के ये होगा कि डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेंगे, जब तक वो दवाई निकालेंगे तब तक बहुत मर जाएंगे, देख रहे हैं संसार। तो भविष्यवाणियां आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, लेकिन हमको ऐसी परिस्थितियों में हमारा क्या दायित्व बनता है वो हमको देखना है। इसमें बाबा ने बताया कि तुम बच्चे अपने संकल्प को समय को व्यर्थ नहीं गवा रहे हो, तो जो भी हमको अनेक खजाने मिले हैं, जो बाबा ने बताया आज बाप किससे मिलने आए, सर्व स्नेही बच्चे हैं, सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, कौन मिल रहा है उनसे, सर्व स्नेही, स्नेह का सागर मिल रहा है, विधाता मिल रहा है, वरदाता मिल रहा है। तो क्या सचमुच वो जो वरदाता से हमको वरदान प्राप्त हुए हैं क्या हम उनको कार्य में लगा रहे हैं, क्या उन वरदानों को हमने अपने संकल्प में समाया है, क्या उन वरदानों को हमने दृष्टि में समाया है, क्या वो वरदान हमारे हाथ में समाया है, उन हाथों से अच्छे कर्म हो रहे हैं, या हमारी वाणी में समाये है, हमारी वाणी ऐसी निकले कि दूसरे को सुख देने वाली है, या किसी के दिल को सीधा छेद कर रही है, या हमने अपने दिल में समाया उनको, अपने दिल को इतना मजबूत किया है कि सामने वाला भी अगर हमको कोई कटाक्ष कर रहा है तो भी हमको आघात नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक इस स्थिति पर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी शुभ भावना काम नहीं करेगी। दूतीपना जो कुछ दिन पहले बाबा ने बताया, इधर की बात उधर करेंगे, हाँ हमारी भी अगर कोई ग्लानी कर रहा है वो भी हमारे चित्त पर नहीं आना चाहिए, अगर वो भी चित्त पर आ गया तो भी हमारी शुभ भावना परसेंटेज में रह जाएगी।
लास्ट मुझे गाने इच्छा और पवित्रता नहीं है तो वो दो, उनका स्लोगन होगा कि दुख दो और दुख लो,
दुख लो
देना ही है, देना ही है।
उनका स्लोगन नहीं है। तो ऐसी आत्माओं से भी हमको मीठा बनना है, उन आत्माओं का भी दिल जीतना है तो कहेंगे हमने जीवन में नवीनता लाई है। अगर हमने उन आत्माओं से दूरी बनाई तो भी हमारे जीवन में इतना परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बाबा ने भी कैसे कैसे आत्माओं को भी, हम सुनते हैं कि जब इंडिया में अभी शायद परसों की मुरली में आएगा कि पाकिस्तान से कितने आए थे इंडिया में, बहुत सारे आए, लेकिन कई के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ के भी चले गए और एकदम एंटी भी हो गए, लेकिन बाबा ने फिर भी उनके प्रति कुछ ऐसा नहीं सोचा। आज वो फिर आत्माएं आ रही है वापस, माना हमारी सोच कितनी, बाबा हमको कितना ऊंचा बनाना चाहता है कि किसी भी एक भी आत्मा के प्रति हमारे में वो नेगेटिव भाव, वो घृणा भाव, वो ईर्ष्या या वो बदले की भावना, वो आवेश की,
भाई बोलते हैं कि केस करे बाबा, केस करे उनको,
हाँ केस करो तो बाबा कहते
बाबा
बच्चों पर
कहेंगे
कैसे
बच्चों
केस
को केस
करें।
कैसे करे।
तो कितनी ऊंची हमारी भावना होनी चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई तो सचमुच ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें हमको डूबे रहना पड़ता है। हम अपना एक्सपीरियंस के जब से हम मधुबन में आए हैं तब से हमारा अधिकतर जो समय है, बाकी जो सारे दिन की दिनचर्या रहती है वो तो चलती रहती है, लेकिन जो हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो अधिकतर हम पढ़ाई में व्यतीत करते हैं। लेकिन उतना पढ़ने के बावजूद भी फिर भी सारा जितना याद रहना चाहिए या जिस गहराई से समझना चाहिए वो उसमें भी अभी बहुत अंतर है समझ लीजिए। इसलिए होता है क्या है, ये ज्ञान तुरंत समझ में नहीं आता है, कुछ दिन तक हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ में नहीं लगता है तो डिसहार्टेड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर रंग के संग में आके जैसे को तैसे होते हैं, फिर जो हमारा जन्म का खाता वो एकदम माइनस के खाते में चट हो जाता
इतना किया हुआ नहीं तो ये होता
है, होता नहीं
नहीं
है। इसलिए इस ब्राह्मण पथ में, ब्राह्मण जीवन में हमको किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हमको डिसहार्टेड नहीं होना, बस भले हमें एक ही दिन में हमको 100 बार असफलता मिले तो भी डिसहार्टेड नहीं होना,
लगे रहे
लगे रहे,
दिल शिकस्त बोलते हैं बाबा,
दिल शिकस्त बिल्कुल नहीं होना है, डिसहार्टेड मान दिल शिकस्त नहीं, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। भले हमको बार बार गुस्सा आ रहा है, देख रहे 2 दिन तो आ ही रहे, छूट ही नहीं रहा है, फिर दिल शिकस्त नहीं होना है। अब गुस्सा आ ही गया, क्या कर सकते हैं, उसको तो चला गया ना, उसके लिए बाबा ने हमको फुल स्टॉप करने की मेथड तो दिया ना, एक अस्त्र तो दिया ना, तुम तो उसको क्यों भूल जाते हैं। अगर हमको मान लो गुस्सा आता ही है तो उसको यूज करने के लिए बाबा ने हमको अस्त्र शस्त्र दिया है, नहीं तो बाबा अस्त्र शस्त्र, अगर बाबा को पता तो इनका गुस्सा जाएगा नहीं तो फिर फुल स्टॉप क्यों कहता बाबा, फुल स्टॉप लगा दो, फिर कहते नहीं, मैंने हमको दिया है, अर्थात बाबा को पता है कि तूफान तो आएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा अपने एग्जाम्पल देते हैं कि इंजन आ गया सबसे ज्यादा तूफान तो इसको लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, हम पथ पर जा रहे हैं, ऐसे नहीं हमको कि हाईवे मिल जाएगा और सारे लोग घरों में बैठे रहेंगे, अरे भाई सभी काम धंधे पर जाएंगे, गाड़ियां लाखों गाड़ियां सड़कों पर मिलेंगी, हमको रास्ता तय करना है, कहीं कोई बीच में टकरा भी जाएगा आगे, लेकिन वहां अपनी यात्रा को रोक थोड़ा तो कबंगी, अगर उसको घर पर पहुंचना है तो सारी मुसीबतें पार करके घर पर पहुंच गए ना शाम को, तो हमको भी अगर अपने घर में पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें सारी सीन आएंगे, चाहे वो छोटों से आ सकते हैं, बड़ों से आ सकते हैं, अपने हमजिन से आ सकते हैं, लेकिन हमको वहां रुक नहीं जाने का, इसके लिए तो बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिए। बाबा ने आज वो जो मिलन की बात है, कैसा मिलन है ये ज्ञान हमको बीच बीच में जब भी दिन में मौका मिले उसको रिकॉल करते रहना, और ये ज्ञान को रिकॉल करने से मन बुद्धि बहुत फ्रेश हो जाता है। जैसे हम परसों सोच रहे थे, आपको भी बताया था शायद, कि दोपहर को मैं सोच रहा था कि देखो मान लो 15-20 गिट्टियां भी खाते हैं भोजन में, हमने खिला दी, पेट भर गया हमारा, लेकिन हमने आत्मा को कितनी गिट्टियां खिलाई, उतनी गिट्टियां 3 टाइम में क्या उतनी गिट्टियां आत्मा को खिला रहे हैं, अर्थात उतने ज्ञान के पॉइंट आत्मा का जो भोजन है उसको खिला रहे हैं, या वो सवेरे सुन के वो डायरी में वही रह गया, वो पचा नहीं, डाइजेशन नहीं हुआ, क्या करेगा फिर, वो खराब करेगा, गैस करेगा, हजम नहीं हो गया, इसलिए उसको बाबा कहते उगाते रहना है। अगर हम खाना खा के भी स्थूल में भी खाना खा के पड़े तो क्या होगा, बीमारी होगी ना, उसको डाइजेशन करने कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मोटापा होगा, कुछ अनेक प्रकार की बीमारी लेंगे, उसी तरह ज्ञान भी ऐसे, अगर ज्ञान हमने सुना है तो कुछ सोचते रहे, कुछ ना कुछ तो सोचते रहना उसके बारे में,
मनन चिंतन करते हैं उसके ऊपर,
मनन चिंतन करो जितने पॉइंट है उनका, और मनन चिंतन धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता है जब आप ज्ञान को रिकॉल करेंगे। मनन चिंतन हम सोचे कि डायरेक्ट हमारा जो मनन चिंतन एकदम प्रखर हो जाए, वो नहीं होता इतनी जल्दी, लंबे समय के बाद धीरे धीरे मनन चिंतन बढ़ता है। हमको अपना याद है, हमको पहले वही बहन जी ने वहां सेंटर में बिठा दिया कि आप इस टॉपिक पर भाषण करना, तो हमने बोला हाँ जी ठीक है, क्योंकि हमको बचपन से नान करने की आदत ही नहीं रही है, माता पिता ने ना करने की सिखाया नहीं, हमेशा हाँ जी, तो हमको हमने बैठ के हम 2 मिनट भी नहीं बोल पाए, इतना याद करके कि सारा भूल ही गया उधर जाके दो लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाए होंगे लेकिन फिर भी बहन जी ने हमको फिर दोबारा बोला, फिर तीसरी बार, तो धीरे धीरे करके हमारा मुख साफ हो गया। और यहाँ आके भी तो क्या है, यहाँ आके भी हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, धीरे साफ हो गया। हमको फिर बोला क्लास कराने के लिए, पहले तो मना करते रहे, पहले दिन में बैठ गए। सचमुच बाबा की मदद मिलती है कि हम समर्पण बुद्धि हो गए। अगर हमारे मन में निस्वार्थ भाव से है, अंदर में कोई मान शान की इच्छा नहीं है, तो बाबा अपने आप काम कराता है। नहीं तो भले अगर मान शान की इच्छा है और हम ज्ञान सुना लेंगे, नहीं वो ज्ञान बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो वहां तक ही सीमित रह जाएगा। ना ही हमको आत्मिक संतुष्ट होगी अंदर से, ना ही वो बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा इतना,
दूसरों को फायदा
ना, दूसरों को फायदा ना, तो अपने को टाइम वेस्ट करें, दूसरे का टाइम वेस्ट करें। इसलिए जो भी भले हमको थोड़ा धारण करते हैं, लेकिन उस धारणा, वो धारणा हमारे में दिखाई देनी चाहिए। बहुत सारी चीजों से उसमें परहेज रखना पड़ता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का, खान पान की शुद्धि चाहिए, कुछ मनन चिंतन करना है, कुछ लिखना है, आपस में ज्ञान चर्चा करनी है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक कल्चर है, संस्कृति है, तो ब्राह्मण जीवन की संस्कृति है। अगर हम अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरे की संस्कृति तो क्या कहेंगे, बात बेवफा कहेंगे। कुछ दिन पहले बोले हुए था बेवफा कहेंगे, नाम प्रमाण बरदा। तो हम जिस जो भगवान ने हमको चुना हुआ है, कल के मूल्य में था, भगवान हमको सुप्रीम बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं, अगर ये भी याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। सोचने विषय है, प्राणों से प्यारा भगवान अभी बाप अभी आया हुआ तुम बच्चों को प्राण दान देने पढ़ाने के लिए। लेकिन खुशी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम पढ़ाई को धीरे धीरे सामान्य समझ रहे हैं, और वो इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम स्वयं को कम देख रहे हैं और दूसरों को ज्यादा देख रहे हैं। इसलिए सारे दिन उस ज्ञान को रिकॉल करना है। तो अभी आज की मुरली पर आते हैं, तो बाबा ने सबसे पहले तो किसको देखा, सर्व स्नेही आत्माएं हैं, सहयोगी है। ये सारी मुरली उन तीन आत्माओं के ऊपर चल रही है, सर्व स्नेही, सहयोगी और सहयोगी। उसके लिए कौन मिल रहा है, सर्व स्नेह का सागर मिल रहा है, विधाता वरदाता है। और इस ये मिलन कैसा है, विचित्र मिलन है, ये रूहानी मिलन है। और ये मिलन के लिए वरदाता अभी आया हुआ है, और संगम पर को संगम युग पर ही वरदान मिलता है,
मिलता है। ये भाग्य है संगम पर ही मिलन का,
संगम पर ही मिलन का भाग्य है। सारे कल्प में ये भाग्य नहीं है, केवल अभी वरदान इसमें,
ये संगम का वरदान मिला हुआ है,
संगम को वरदान मिला हुआ है, संगम का नहीं, संगम को ये वरदान मिला हुआ है। तो अगर हम इस वरदानी समय को श्रापित समय में लगा दे तो कितना बड़ा हम अपने कल्याण कर रहे हैं, जैसे अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कितना विस्मृति हुई पड़ी है, अगर हम सारे दिन किसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि सचमुच ये वरदानी समय चल रहा है। वरदान अर्थात क्या है, कि बिना मेहनत के हमको प्राप्ति हो रही है, उसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, बैठे बैठे अनगिनत खजाने जमा हो रहे हैं
फ्री में,
उसमें फ्री में, उसमें क्या सारी, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा बाबा ने जो बोला मनसा सेवा, किसके ऊपर फोकस किया है। और आज की परिस्थिति के अनुसार संसार में जरूरत किसकी चीज की, सबसे बड़ी मनसा की जरूरत है। जो संसार में डिप्रेशन बढ़ता रहा, टेंशन तनाव अवसाद बढ़ता जा रहा, अशांति बढ़ती जा रही है, भय का माहौल उत्पन्न है, कैसे जाएंगे हम उनके पास, केवल हमारी सोच से। श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना। और वो तभी होगी जब सबके प्रति अपनापन, और वो तभी अपनापन आएगा जब हम उसके समान स्थिति, उसके समान, उसके समीप जाते जाएंगे। तो जितना जितना हम नीचे हैं, उतना उतनी हमारी भावनाएं भी, या हमारी जो प्रकंपन है, हमारे जो वाइब्रेशन है, वो सीमित रहेंगे। जितना हम देह की धरने से ऊपर उठेंगे, हमारे वाइब्रेशन भी उतने संसार में फैलेंगे चारों। जब तक हम देह के संबंधियों की चर्चा कर रहे हैं, अपने देह का चिंतन कर रहे हैं, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा समय चला जा रहा है, व्यक्ति वस्तुओं में हमारा समय चल रहा है, तो हमारे वाइब्रेशन भी उन चीजों तक ही जकड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं जाकर। इसलिए आत्माओं के प्रति सोचना, इसलिए बाबा ने कहा रूहानी मिला है, विचित्र मिला, अदृश्य मिला है, मिलन है ये, तो कितना ऊंचा मिलन है। तो इसमें फिर बाबा ने इसमें विशेषताएं बताई, एक तो बाप की विशेषता, दूसरी बच्चों की विशेषताएं, दो विशेषताएं। कौन सी, बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, के बोले बाले साधारण बच्चे हैं, लेकिन विशेषता है उन्होंने बाप को पहचान लिया, संसार में बुद्धिमान व्यक्ति हैं, राज्य विद्या वाले हैं, साइंस वाले, साइंस की शक्ति वाले हैं, साइंस विद्या वाले हैं, फिर राज्य अधिकारी हैं जो संसार में सत्ताओं पर काबिज हैं, धर्म नेता हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम भोले वाले बच्चों ने पहचान लिया, ये तुम बच्चों की विशेषता है। अगर फिर बाबा ने बतन में देख के मुस्कुराया, अनजान आत्माएं को पता चल जाए कि ये विश्वराज तो आश्रयवत हो जाएंगे, वो ये वाले विश्वराज्य अधिकारी बनने वाले तो आश्रयवत हो जाएंगे, लेकिन तुम बच्चों को निश्चय है ये
जाना
बनना ही है वो। तो भोले वाले साधारण बच्चे, भोलानाथ बाप के बच्चे हैं, तो बाबा को बतन में देख के मुस्कुराता, लेकिन क्या सचमुच हम वो अनुपालना कर रहे हैं उसकी, उसको अमल में लगाए, क्या वो हमको स्मृति में है सचमुच के मित्र उठे विश्वराज्य के अधिकारी हैं। बाबा ने कहा तुमने पा लिया और वो भी इंतजार ही कर रहे हैं, वो अभी ढूंढ ही रहे हैं, उसको परखने में लगे हुए अभी, उसमें समय उनका जा रहा है, शक्ति सब उसमें गवा रहे हैं। तो ये हम बच्चों की विशेषता है, और बाप की विशेषता क्या है, क्या बताई थी, ना उम्मीदवार आत्माओं को भी उम्मीदवार बनाना, ये बाप की विशेषता है। तो जो बाप की विशेषता है क्या वो हम भी विशेषता अपना रहे हैं कि सचमुच, या कोई जो पुरुषार्थ में है या ब्राह्मण जीवन में, उनके पुरुषार्थ में भी एक नया उमंग था, वो भी कहने से नहीं, अपने जीवन से, जो बाबा ने कुमारी को बोला कि जीवन से पाठ पढ़ाओ कि सचमुच हमारा पुरुषार्थ, हाँ हमारे पुरुषार्थ में
सुनेंगे नहीं,
हाँ सुनेंगे नहीं, हमारे पुरुषार्थ में निरंतरता बनी चाहिए, और हमको सुनाने की चेष्टा भी नहीं करनी, प्रयास भी नहीं करना, हमको हमारा जीवन ही पाठ पढ़ाए किसी को, हम कभी ये नहीं सोचे कि हमको प्रख्यात होना है, जाना है कहीं, नहीं, जिस भी स्थान पर हमको जो भी सेवा मिली है, जो भी, चाहे वो नीचे झाड़ू मारने से, जिसको संसार में लोग नीचे समझे, लेकिन इस ब्राह्मण संसार में कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है, उसमें भाव कौन सा है, चाहे वो कोई भी सेवा मिली है, लेकिन उस सेवा से हम पूरी आत्मीयता से, पूरा मनोयोग से, पूरी निष्ठा से, पूरी समर्पणता से कर रहे हैं, तो उस सेवा में भी, आज हम बताया मधुबन वासियों को देखते हैं, ज्ञान विज्ञान में भास्कर भाई सेवा में हमेशा अथक है, एक एक मधुबन वासी कितनी विशेषता है कि बात मत पूछो। आप कभी एक दिन यही चिंतन करो कि सबकी विशेषताएं देखो, अवगुण तो जल्दी दिखा जाएंगे लेकिन विशेषता ढूंढने में टाइम लगता है।
कई बोलते तो थाली के इसलिए भोजन उसमें पेपर में करते हैं, थाली वेस्ट न जाए पानी,
एक एक
वेस्ट न जाए,
दाना भी कोई वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, जो वेस्ट करते हैं उनको देखते हैं हम
जल्दी देख
लेंगे, लेकिन अगर लंबे समय तक अगर हम नहीं वेस्ट करें तो हमको देख के दूसरे अवश्य बदलेंगे, एक दिन आज नहीं कल बदले बिखरेंगे ये बाद में। ऐसे कई दादी जी जानकी जी एक बार सुनाते कि कितने सालों तक हम तो किसी को भोगी बेचते रहे, वो ज्ञान में चलता रहा कितने सालों तक, छोड़ दिया कितने साल तो कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी गुरुवार का भोग बेचना बंद नहीं किया, आकर वो फिर ज्ञान में आ गए, तो कितना बड़ा ना उम्मीदवार उन्होंने होप पैदा कर दिया, उन्होंने एक आशा की किरण, उन्होंने उम्मीद छोड़ी नहीं है कभी भी, उम्मीद की किरण हमेशा जगा के रखी है, ऐसा नहीं कुछ चला गया तो हम सोचे ये तो है ही ऐसे, बाबा ने कहा तुम भी कैसे थे पैसे आज की मूल्य में था, तुम्हें पहले कैसे थे, तुम अपने लिए सोचते, दूसरों को तो सोचते रहे कि तो है ही ऐसे, तुम पहले कैसे थे सोचो, इसलिए बाबा साकार मूल्य सुनाते तो क्या कहते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया में मनुष्य पत्थर बुद्धि भी हो गया, तमो प्रदान हो गया, फिर बोलते तुम भी ऐसे थे, तो हम इस ज्ञान में आने के बाद कहीं ना कहीं हमको एक अहम जागृत हो जाता है, जो हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो संसार में या चाहे वो ब्राह्मण संसार में, इसलिए हर विषय हर एक में विशेषता देखने, चाहे वो ज्ञान में है चाहे वो नहीं है, हर एक से सीखने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आज हम देख रहे हैं कि ज्ञान में नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है वो आने वाले समय में 10 दिन में ऐसा हाई जंप मारे कि वो आगे चला जाए,
होता है अभी कई आत्माओं को देखा कि वो पहले अमृत योजना नहीं करते थे, लेकिन आप बहुत 2 बजे से चल जाए,
बिल्कुल, तो वो समय आएगा ऐसे, वो जंप मार के निकल जाएंगे उस साल, इसलिए हमारा जीवन ऐसा बन जाए, निरंतर एक साथ पुरुषार्थ बन जाए कि दूसरे अपने आप ही बदलते हैं, इसलिए हमको कंट्रास्ट नहीं करना है, कभी कंपैरिजन नहीं करना है किसी से कि पुरुषार्थ में, अगर कोई पुरुषार्थ में आगे जा रहा है हमको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उसके पुरुषार्थ में आगे जाने से ही हमारा रास्ता खुल रहा है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो, अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे से पुरुषार्थ में आगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने का मेंटेलिटी होनी चाहिए। आज दिल्ली वालों से बाबा ने क्या कहा, ये आगे बढ़ना है
जो बाबा ने बोला।
नहीं वो अलग, वो तो कुमारियों के लिए बोला, चार जोन से बाबा मिले आज महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वालों को क्या करना है, कमाल करना है। ऐसी कोई आत्मा निमित, एक निमित आत्मा इसमें जो अनेक आत्माओं को लेके आया, ऐसे दिल्ली वालों को सेवा में आगे बढ़ना। ऐसा नहीं हो गया तो हो गया, सेवा में आगे बढ़ते रहे। ऐसे राजस्थान क्या है, नंबर वन बनना है। नंबर वन क्या है, हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इसलिए नंबर वन बनना है। ऐसे विदेशियों से बाबा ने बात की, कौन सी बात की विदेशियों से,
हम तो विदेश में है
ना, ना। विदेशियों को बाबा ने बात की है कि अभी भय का वातावरण बढ़ गया है, तुमको फरिश्ता बन चारों खुशी का वातावरण बना है, सारों चारों खुशी की लहर फैलानी है, वायुमंडल बनाओ, वातावरण फैलाओ, भयभीत आत्माओं को खुशी की अनुभूति कराओ,
खुशी।
तो ये हमारे सारे कर्तव्य है, तो हम इन कर्तव्य पर कितना खरा उतर पा रहे हैं। तो ये बाबा ने दो विशेषताएं देखी, एक बच्चों की विशेषता है कि बोले वाले बच्चे हैं, लेकिन दो संसार की अनजान आत्माएं क्या सोचती हैं हमारे लिए, और ये बोले वाले बच्चे विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त कर लिया, हमने पा लिया, और वो भी सोच रहे इंतजार में खड़े हैं वो आत्माएं। और बाबा की विशेषता कौन सी बताई, ना उम्मीद आ रहा आत्मा को भी उम्मीद बार रहा है, ये बात की विशेषता है। फिर नेक्स्ट इज समीपता का अनुभव करना। इसमें बाबा ने दो एग्जाम्पल दिए, एक तो एग्जाम्पल दिया कि जो बी आई पी लोग शुभ संदेश भेजते हैं तो भी हम समीपता का अनुभव करते हैं, और दूसरा कौन सा भैया, रॉकेट का एक देश से दूसरे देश भेजते हैं तो वो उसका भी समझो, तो क्या तुम्हारी शुभ भावना नहीं काम कर सकती,
तुम
कम उनसे कम हो
क्या, स्टेज प्रोग्राम करते
मन से सेवा कम,
तो समीपता का अनुभव। और इसी में फिर जो गोल्डन जुबली की तैयारियों के लिए बाबा ने बोला, तो गोल्डन जुबली की तैयारियां कौन सी है, उसमें बताया विशाल दिल विशाल उमंग विशाल रूप की तैयारियां हो रही हैं, इसमें भाषण करने वाले भाषण भी करेंगे, फिर निमंत्रण देने वाले निमंत्रण भी देंगे, भोजन वाले भोजन बांटेंगे। लेकिन ये तो ठीक है, विशाल दिल से आप अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन विशालता इसको नहीं कहा जाता है कि केवल उसी सेवा तक सीमित रहना। विशालता अर्थात उसमें नवीनता समाई,
हर
कर्म में हर समय उसमें नवीनता समाई, जो हमने पहले एक साल किया वो अभी उसमें नवीनता दिखाई देनी चाहिए। तो इसमें नवीनता की बात, तो हमको ज्ञान में भी नवीनता चाहिए, योग में भी नवीनता चाहिए। अगर इन दो चीजों में नवीनता है तो सेवा में नवीनता अपने आप आएगी, करनी नहीं पड़ेगी। नवीनता अर्थात सेवा में हमको रुचि दिखाई, रुचि पड़ेगी,
सोचना भी नहीं पड़ेगा,
सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली काम होता रहेगा, उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी पड़ेगी।
ज्ञान योग से व्यक्ति मजबूत हो जाता है तो सेवा ऑटोमेटिक,
बिल्कुल बिल्कुल, जब ज्ञान योग मजबूत है ना हमारा तो सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी, सेवा में फिर ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बाबा ने कहा बैलेंस जरूरी है। एक मुरली बाबा ने यह भी कहा था कि ऐसा नहीं कि आपको लौकिक में ज्यादा समय देना है, अलौकिक सेवाओं के बंधन में बंध जाएंगे तो लौकिक बंधन अपने आप छूट जाएंगे। तो हमारा ज्यादा सारा समय कहां जा रहा है, भले हम लौकिक में भी रहते हैं लेकिन लौकिक में भी हमारी सोच कहां चल रही है, भले तन हमारा वहां है लेकिन मन तो कोई, मन को तो कोई थोड़ा बांध सकता है। सारा खेल तो हमारा आंतरिक जगत का है, अंदर से हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, अंदर के संसार में हमारा क्या क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार हमारी संकल्प शक्ति है। जब तक हम अपने संकल्पों को रिफाइन नहीं किया, पवित्र नहीं किया, शक्तिशाली बनाया, ऊंच नहीं बनाया, तब तक प्रक्रिया हमारी बहुत धीमी स्लो हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहले अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। संकल्प हमारी एनर्जी है, इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। तो हर ब्राह्मण तो अपने आप में ब्रह्मा है ना, सारे दिन की सृष्टि तो हम ही रच रहे हैं, तो सारे दिन में हम कौन कौन से ऐसे संकल्प रचने हैं, चाहे वो कमजोर संकल्प रचते हैं तो भी उनके हमको पालना करनी पड़ेगी, चाहे हम मजबूत संकल्प करते हैं तो भी उनके पालना पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा ना बिच्छू टिंडन रचने रहते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो काटते रहते हैं। बिच्छू टिंडन क्या, कमजोर संकल्प, माया के संकल्प, मेरे से होता नहीं है, अपने आप को एक हीन भावना अंदर में भर लेनी है, तो कोसते रहना अपने आप को। तो संकल्प उन संकल्पों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं। जैसे योग में क्या नवीनता है, तो हम सोचते तो हमको एक ही संकल्प, बैठे बैठे शाम को योग में आए तो योग में क्या नवीनता होनी चाहिए, तो हम ये सोच रहे कि बाबा की सारी शक्ति मुझ आत्मा में विलीन होती जा रही है। ये विलीन शब्द तो संसार कहना कि आत्मा परमात्मा विलीन हो जाती है, लेकिन आत्मा में परमात्मा की सारी शक्तियां विलीन होती जा रही है, तो एक नया वाक्य हो गया है। ऐसे हमको योग में नहीं था। योग का हम कोई भी संकल्प करते हैं वो सब एक्यूरेट है, लेकिन नहीं तो कई बार ये भी मन में कई द्वंद बना रहता है, पता नहीं हम योग में संकल्प कर रहे हैं ठीक है नहीं कर रहे हैं। नहीं, बाबा से रिलेटेड कोई भी योग का संकल्प है सब एक्यूरेट है, उसमें बाबा की आप जुड़ी होनी चाहिए।
सोच रहे हैं वो योगी,
वो योगी जिस संकल्प के साथ
वाइब्रेशन
है, जिस संकल्प के साथ बाबा जुड़ा हुआ है वो हमारा योग में संकल्प है, चाहे वो कोई भी दृश्य इमर्ज कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने मन बुद्धि को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसमें हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो बाबा भी उसमें जुड़ा हुआ है, वो शक्ति दे रहा है। इसलिए बाबा ने कहा चित्रों के आगे बैठो, तो चित्रों पर आगे बैठने से अनेक प्रकार के हमारे संकल्प जागृत होते हैं, हमारे संकल्प शक्ति जागती है उसमें। और जब एक बार हमको रस बैठ जाता तो फिर तो कहीं चित्र हो विचित्र कुछ भी हो जरूरत नहीं पड़ती, कहीं बैठ के योग करो। अभी वर्तमान समय क्या है, कहा जाता है कमरे में बैठ के योग करो, अभी ना लाइट ना चित्र कुछ नहीं करना, तो
कोई चित्र ही नहीं है,
और बाबा तो चित्र को इतना पसंद नहीं करते थे। माने चित्र कौन से प्रदर्शनी वाले ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे जैसे आज ही हमको एक फोन था माता जी का, किसी माता का, बोला अभी ये बाबा की समाधि बनी है, दादियों की बनी है, तो मम्मा की क्यों नहीं बनाई, तो क्या कारण होगा क्यों नहीं बनाई उनकी, तो वो पूछे बोला मैंने और भी पूछा कहीं से, तो हमने तो ये बोला, मैं हमने बोला कि ब्रह्मा बाबा के टाइम में ब्रह्मा बाबा को पिक्चर खींचना खिंचवाना पसंद ही नहीं था बिल्कुल, वो तो उनको इतना वैराग्य था संसार से कि उनके जो बॉम्बे में किसने श्री छोड़ा था बिशप किशोर, हाँ, तो बाबा को कहा कि बाबा उनको श्री छोड़ दिया, उनको ले आए इधर, तो बाबा ने कहा लाने की जरूरत नहीं, श्री छोड़ दे तो भाई जला दो काम खत्म कर दो, बाबा को कोई अटैचमेंट नहीं उन चीज से। बाबा को किसी बच्चे ने कहा बाबा मम्मा हमारी चली गई, तो बाबा ने कहा कि एक दिन तुम भी चले जाओ, बाबा को वैराग्य था, तो हमने उसको कि बाबा को इन चीजों को लेना नहीं, इसलिए वो बनाया नहीं, तो बोला फिर इनका क्यों ना है। हमने बोला कि आने वाले समय में अनेक लाखों की संख्या में ब्राह्मण आएगी, तो हमारे लिए तो कुछ आदर्श मुहूर्त तो होना चाहिए ना, इसलिए दादी ने सारी स्मृतियां बनाई हमारी, ताकि हमारा बुद्धियोग उन आदर्श जो हमारे सामने होकर गए हैं, हमारा बुद्धियोग लगे कि सचमुच वो क्या करके हमको क्या करना है, स्मृतियां सामने होंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना, हमारे सामने कोई एग्जाम्पल लेने को तो कैसे करेंगे। तो बाबा तो चित्रों से पहले वो सिखा चुके पहले से, तो वर्तमान समय जो संसार में परिस्थितियां चल रही हैं, ना कोई रेड लाइट होगी ना कोई सामने चित्र होगा, एक सेकंड में आत्मा को शरीर से निकल के जाना बस, और लंबे समय तक हमको ये अधिकतर अभ्यास करना है इस बॉडी से डिटैच में, और इस बॉडी से डिटैच होने का सबसे सहज उपाय है जैसे हम यहां बैठे हैं, भले हमारा मन बुद्धि ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन यहां बैठ के हमने शांति स्तंभ देखा हुआ सामने, यहाँ बैठ के हमको योग शांति स्तंभ में बैठ के करना है, वहां जाने का नहीं है, यहाँ बैठ के शांति स्तंभ में बैठना है कि मैं शांति स्तंभ में बैठा हुआ हूँ और वही योग करता हूँ बैठ के, डिटैच हो जाता
है।
चार धाम का इसलिए बाबा ने चार धामों को बताया, भले हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठे बैठे चार धामों की यात्रा करनी है, यहाँ बैठे बैठे कल हम शाम को योग में कर रहे थे या शायद आज हम लिख मिले कि मैं स्टेज पर बाबा में शांति मन में स्टेज पर मिल रहा हूँ, कितना सुंदर दृश्य है, जैसे बाबा ने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं या बाबा ने प्रधानी हाथ ऊपर रखा हुआ है, तो ये दृश्य इमर्ज करने। या एक और हमको बहुत अच्छा लगता दृश्य कि जैसे हम सूक्ष्म बतन में, और सूक्ष्म बतन में सारी ना एडवांस पार्टी बैठी है, सारी दादियां बैठी हैं, तो बहुत सारी दादी को देखा हुआ है, तो सारी दादियां बैठी हैं और बीच में हम बैठे हैं, मम्मा और बैठे हुए, और सभी ने ना अपना हाथ इधर रखा हुआ है, कितना सुंदर दृश्य हो गए, सारी की सारी शक्तियां उतर रही है, और ऊपर से शांति धाम की सारी एनर्जी बाबा लेके ऊपर से आता है और वो भी सारी दर्शन मरती जा रही है। तो लंबे समय तक अगर इस तरह के हम करते हैं अभ्यास, तो एक नवीनता बनी रहती है, नहीं तो मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ ये भी संकल्प नहीं आता कई बार, तो
नवीनता करने से ज्ञान भी अंदर बैठता है,
ज्ञान बैठता अंदर में, क्योंकि बुद्धि शुद्ध तभी होगी क्योंकि प्योरिटी का सागर है, और उस प्योरिटी को हम अपने में लाना है तो लंबे समय तक हम उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, तो उस प्योर मन, इसलिए बाबा कहते सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है, लेकिन इस बर्तन में हमने कई कुछ भर के रखा हुआ है, एक तो पिछले अनेक जन्मों का पता नहीं हमको क्या क्या भरा हुआ है, अगर हमको वो भी पता चले तो हम तो जी नहीं पाएंगे,
वो इमर्ज होगा तो अभी है ना,
तो वो भरा है, और अभी वर्तमान में ब्राह्मण बनने के बाद भी दूसरा भरने का अगर प्रयास कर रहे हैं जो अनावश्यक है, व्यर्थ है, जिससे मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, तो ज्ञान फिर काम कैसे करेगा? दवाई काम करे, मैं दवाई खा रहा हूं लेकिन परहेज भी नहीं कर रहा हूं तो कैसे होगा? मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परहेज तो मस्त करना पड़ेगा, अगर हम मुरली सुनते हैं तो उसके अनुसार कुछ तो कुछ करो उसके ऊपर। भाव ने कहा कुछ तो चलो उसके ऊपर, थोड़ा तो हम चले तो मदद करेगा, अगर हम थोड़ा भी नहीं चलेंगे तो कैसे बाबा मदद करेगा? वो तो बचपन में बाबा एक दो साल मदद कर देता है सबको, ये तो हर ब्राह्मण को अनुभव होता है, लेकिन जैसे दो तीन साल के बाद होते ना तो पता चलता अब ब्राह्मण जीवन चालू हुआ है।
जब 4-6 साल होता
है, पहले तो बाबा ने गोदी में पकड़ के रखा हुआ था, जब निकलते ना बाहर तो पता चलता अब ब्राह्मण जीवन क्या है। पहले तो सब बताया ना, सेंटर में जाते सब देवियां लगती हैं, धीरे धीरे लगती तो फिर एक दूसरे के हम अवगुण देखने लगते हैं, जो पहले हमको संतोषी देवी दिखती है फिर वो काली देवी लगती है, ऐसे लगता है अगर हम अवगुण देखते हैं। तो बाबा ने कहा फिर, और मुरली बाबा ने कहा कि मोहब्बत से मेहनत करो, ये स्नेह जो है सबको वश में कर लेता है, ये स्नेह ऐसा है जिसके पास समय ना भी हो वो भी ना के जाए हाँ कर देता है। अगर हमारा किसी से स्नेह है तो वो कैसे ना भी करके सारे काम धाम निपटा के निकाल के हमारे पास पहुंच जाएगा। तो जो भी हमको मोहब्बत से मेहनत करनी है, हर एक जो हम सेवा करते हैं जो भी सेवा मिलती है पूरा उसको प्यार से स्नेह से करें तो ये हमको दूसरा भी सहयोग देगा। दूसरे को हम सहयोग देते हैं तो भी हम स्नेह से दें, निस्वार्थ भाव से दें, उसमें कुछ अपेक्षा ना हो तो हमको सहयोग मिलता रहे। और सबसे सहयोग मिलना है यही दुआएं हैं। अगर हमको संगम पर सहयोग नहीं मिल रहा है तो सारे कल्प में कैसे मिलेगा? सारे कल्प के जीवन का जो एक दृश्य है वो अभी हम अनुभव कर सकते हैं।
रिकॉर्डिंग
तो कर रहे हैं लेकिन उसकी अनुभूति कि हमारे 84 जन्म बाबा ने कहा कि कैसे रहे होंगे वो हम ब्राह्मण जीवन में देखते हैं। अगर इस ब्राह्मण लाइफ में हम सभी के साथ एक्यूरेट चल रहे हैं और सबका हमको सहयोग मिल रहा है तो इट मीन्स चाहे ब्राह्मण संसार में चाहे बाहर के संसार में सबके साथ मिलजुल चल रहे हैं, किसी के साथ हमारा टकराव नहीं है। अगर कहीं टकराव हो भी रहा है तो हम उसको जल्दी निपटा रहे हैं तो सारा कल्प की जो प्रक्रिया ना वो अभी भी चल रही है, रिकॉर्डिंग अभी चल रही है क्योंकि अभी की रिकॉर्डिंग प्रारब्ध होगी भावने का, पूरे कल्प कल्पांतर, इसलिए भावने का कल्प कल्पांतर का जन्म जन्मांतर की बाजी है ये। और हम अगर हम इस अपने आप को सभी देखें हम तो अभी अभी ज्ञान में आए समय, और इसमें तो ज्ञान की सब सहूलियत है, ज्ञान को अप्लाई करने की, साधना को आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली वातावरण बनाने के लिए सब चीजें मौजूद है, ज्ञान का खुला भंडार है
अपने हाथ में। शुद्ध के पूरा रात अमृत वेला हो गई
है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो उम्र है हमने उस उम्र में देखा, जैसे आप बता रहे ना हमने उस उम्र में हम जो पुरुषार्थ करते हैं ना पूरी रात बैठ सकते हैं, और ये हमने भी करके देखा, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है ना तो शरीर भी इतना साथ नहीं देता, इसलिए इस उम्र में जो पुरुषार्थ करना ना वो परमानेंट का हो जाएगा। नहीं तो एक बार पटेटी से गाड़ी उतरने लगी फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अभी से जिस पटड़ी पर गाड़ी को आप डालेंगे उसी पटड़ी पर चलती रहेगी। अगर आपने उतरने की कोशिश की दोबारा आना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा ने कहा हड्डी गुड्डियां तो एक बार दाग लग गया दाग तो दिखेगा, तो चाहे वो अमृत वेला है चाहे वो साधना है चाहे ज्ञान है योग है, इस उम्र में जो कर लिया ना वो कर लिया, शारीरिक मजबूती है सब चीजें, इस उम्र में अपने अपना संग हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, कुसंग में नहीं आए, बस कुसंग से संभाल चाहिए। हमने कई बार ये भी देखा है जैसे हमने पॉजिटिव बात बताई तो नेगेटिव भी है इसमें, कोई के नए नए आते हैं तो फिर नए जो ना वो दूसरी बातों को देखते हैं, हम थोड़ा भी इशारा कर योग के लिए उनको करें ज्ञान योग के लिए तो उल्टा जवाब मिलता है, क्योंकि पहले पहले तो ठीक चले कि जैसे संग में आए अब उनको वही अच्छा लगता है। इसलिए दीदी मनमोहनी इस बात से बहुत सबको सावचेत करती थी कि मधुबन में आयो लेकिन एक से सभी संभाल रखना, संघ से संभाल, क्योंकि पुरुषार्थ में हमको अकेले चलना, हमको कोई, अभी वर्तमान में तो ये भी देखने में आता है कि जो हम खुद ही पुरुषार्थ करेंगे वही कर पाएंगे, क्योंकि बड़ों के पास भी कहाँ टाइम है। अभी जो दादियों से हमने पुरुषार्थ की पालना ली है, खाने पीने की पालना में हमने ध्यान नहीं दिया था कभी, हमने जो पुरुषार्थ की पालना के जितना हमने सुख पाया है वो हम देखते हैं वही सुख हमको चला रहा है आज की डेट में। सवेरे सवेरे हम बैठते थे, अभी तो ये पहले तो डॉक्टर श्रीमंत भाई आते थे, तो उस समय के भी हम देखें बहुत शक्तिशाली वातावरण होता था, और उस समय तो दादियां भी इधर ही थी, प्रकाशमणि दादी, चंद्र रत्नमणि दादी, मनोहर दादी आते रहते थे, शांतामणि दादी आते रहते थे। तो जो पुरुषार्थी जो उस समय बैठा हो ना, और उसमें क्या वो जो बताया ना मैंने शरीर की बात, तो 2 बजे हम माइक्रोवेव उठ जाते थे, हालांकि अभी हम 3 सवा 3 में उठते हैं, लेकिन यह है कि हम हमेशा हमारा एम ये रहता है कि जितना समय हम योग करें तो योग हमारा इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। योग की क्वांटिटी को ध्यान में रखते क्वालिटी को ध्यान में रखना पहले, क्योंकि शरीर को भी देखना है, इसलिए शरीर तो यंग है, जब तक यंग है तब तक पुरुषार्थ करें, लेकिन जैसे जैसे ये वृद्धि को पाएगा शरीर की आयु बढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकृति का ये शरीर बना हुआ है उस प्रकृति को छोड़कर हम दूसरी प्रकृति में रह रहे हैं, इसमें उसके अनुसार ढालना, इसमें भी टाइम, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हम शुरू शुरू में तो 1-2 महीने तो हमारा इतना ये अनबैलेंस हो गया, इतनी गर्मी होगी बॉडी में, बात मत पूछो, लेकिन हमने अंदर से दृढ़ संकल्प करे कुछ भी हो जाए अपने को एडजस्ट करना है, धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। लेकिन उस समय जो बताया ना 2 बजे उठ जाते थे, तो हम संगठन में रहते विशाल बन गए उस समय, तो वो एक संगठन का बल होता है, इसलिए संगठित रूप से पुरुषार्थ करना और उस पुरुषार्थ को निरंतर बनाए रखना, ये हमारा, और उस पुरुषार्थ के लिए बाबा हमको भी सच में मदद कर रहा है वरदान। अभी भी इस समय भी हमने कुछ दिनों से जो जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम फील करें कि बाबा की अभी एक्स्ट्रा मदद अनुभव हो रही है, अभी हमने जहां तक अपने पुरुषार्थ में अनुभव किया अभी बाबा एक्स्ट्रा मदद कर रहा है, नहीं तो पुरुषार्थ के प्रति संकल्प आना ये उसके आशीर्वाद के बिना नहीं आएगा संकल्प। अगर मैं सोचूं कि मेरा पुरुषार्थ के संकल्प चल रहा है, नहीं, उसकी कृपा आएगी। हाँ,
हमें समझती है
स्मृति
वैसे
है,
जा रहा है तो
बिल्कुल
उसकी कृपा ही है।
बिल्कुल, उसकी अगर मन में सच्चाई पाई है, दिल का स्नेह है, बोला ना बाबा ने, दिल का स्नेह है, आज के मूल्य में अगर दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, तो दिल का स्नेह मधुबन वास, दिल का स्नेह उससे वरदान का अनुभव कराएगा। इसलिए सच्चे दिल से जो पुरुषार्थ हो सके अपने ज्ञान युग में मस्त रहना है, और यहाँ का जितना अभी अनुभव उठाया तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे,
ये चांस गया तो गया, फिर
ये जहां तक हम जो फील करते हैं जो संसार को महापरिवर्तन करने का जो समय है उसका पहला चरण अभी ये आरंभ हुआ है। आरंभ एक तो बड़े स्तर पर भले अलग हो ना हो बात की बात है, लेकिन पुरुषार्थ का जो 2-3 चरण मिलेंगे हम जहां तक हमको जैसे फीलिंग आती है, ये पहला चरण है जो हमको बाबा ने दिया है ब्राह्मणों को लॉकडाउन में, जो करना कि आपको ये नहीं कह सकते फुर्सत नहीं मिली, हम सेवा में बिजी हैं, सब नौकरियां दोकरियां बंद करके घरों में बिठा दिया, अब करो जितनी साधना, और जिसको प्रैक्टिस होगी वही कर पाएगा, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए बाबा अभी भी वरदान दे रहा है, मदद का अनुभव करा रहा है। अगर अभी भी हमने अपने आप को सचेत नहीं किया तो आने वाले 2 चरणों में भी फिर हमारे ऐसे जाएंगे, जैसे लॉकडाउन का पहला चरण हुआ, अब दूसरा चरण चालू हुआ ना, ऐसे धीरे धीरे चालू होते रहेंगे, अभी इतनी जल्दी सुधरने वाले
नहीं, खत्म नहीं होगा ये, लंबे समय
लंबा समय तक चलेगा इसमें,
जैसे ही लॉकडाउन खोले हो सकता है प्रत्यक्षता हो।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
यहाँ तो भीड़ लगी, अपने ब्राह्मण कितने आएंगे ना, अभी रात हो रहा है।
देखो हाँ, एक ये भी चीज है, दूसरा हमको कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी नहीं सोचने का, हमको क्या करना है वो सोचने पर सारा फोकस अभी है। बाबा ने कहा
हम
तुमको इतना तैयार होना है कि अपनी शक्ति से ही आने वाली आत्माओं को चलाना पड़ेगा,
अपने बेकार तो विनाश करने और उनके भी करने हैं।
हाँ, समय तो जो होगा वो तो सामने दिखाई देगा हमको, कल को कुछ ही होगा आ जाएगा सामने दृश्य आएगा, अब वो दृश्य तक भी हम रहेंगे तभी दिखाई देगा, तब तक उससे पहले हम चले नौ दो 11 हो गए तो क्या होगा, तो हमको उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना फ्यूचर में क्या होगा। जो मुरली में सारा उसको पढ़ते जाओ और उसका साक्षी होकर देखते हैं, उसी में मजा है बस। साक्षी दृष्टा कल के प्रधान में था ना, साक्षी दृष्टा उस अवस्था में रहता। और उसमें प्रधान में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, कौन सी? नहीं, अपमान और अभिमान।
अपमान और अभिमान कट करने से,
किसी की बात को, किसी की भी बात को कट नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी की बात को कट कर रहे हैं, माना हम उसका अपमान कर रहे हैं,
जो कट कर रहा
है स्वयं को अभिमान अभिमान बढ़ा दे रहा
है। उसकी बात कट किया उसका अपमान हो रहा है, और जो अभिमान है जो कट कर रहा
है वो तो अभिमान है ही। तो ये दोनों चीजें हैं, तो ये सब बातें हमको सूक्ष्म बातें होती हैं, भले पूरा प्रधान याद नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो धारण कर ले कि हमको किसी की बात कट नहीं करनी।
ये धारणा हो तो बहुत, ये आ गए उसी में सारे।
तो ये चीज है। और क्या कहा बाबा ने मुरली में? फिर कुमारियों के बारे में वो बात हो कि ये निर्दोष जीवन है, कुमारियां अर्थात एवरेडी, कुमारियां अर्थात बेहद में रहने वाली, मध्य प्रदेश
करने वाली,
हाँ मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात,
गुजरात
हाँ, तो ये माना हद से मतलब बेहद में रहने वाली
आए थे ना।
और सफलता का एक साधन और भी बताया बाबा ने, कौन सा? बेहद की स्टेज पर बेहद की आत्माओं की सेवा करने का श्रेष्ठ संकल्प करना ही बेहद सफलता का साधन है। शुभ भावना, शुभकामना,
बड़ों का शुभ भावना, शुभकामना ही सफलता का लाएगी, सफलता दिलाएगी श्रेष्ठ आत्मा।
और क्या बताया कुमारियों के लिए? फिर अपने जीवन से पाठ पढ़ाओ, सुनना कोई नहीं चाहता, उसमें एक एग्जांपल दिया कि संसार में रेडियो एक सुनना होता है और देखना दोनों से अच्छा कौन लगेगा, देखना, समझते ना? तो आपकी जीवन से पाठ पढ़े, आपके जीवन को देखे, सुनना नहीं चाहता कोई भी, लाइफ ही आपकी टीचर बन जाए। बिल्कुल, अभी ज्ञान भी ऐसे, हमने देखा है यूट्यूब में कोर्सों पर कोर्स चल रहे हैं, कोर्स पर कोर्स चल रहे हैं ऑनलाइन।
आजकल तो वीडियो का
सबसे पहले कोर्स हमको अपना कोर्स करना है,
उसी समय तो खुद के पुरुषार्थ का दिया हुआ।
बिल्कुल, कई बार योग में बैठते ना तो पहले आप योग में दूसरा कोई संकल्प नहीं करोगे, बस केवल यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, बस यही सोचो। कुछ दिनों से मैं अभ्यास करते हैं और सच मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आत्मा के बारे में सोचते ना तो संसार भूल जाता है, क्योंकि आत्मा का फिर आत्मा का घर ही आ जाता है, आत्मा का बाप ही आता है, आत्मा के गुण ही आ जाते हैं, उसके स्वरूप ही आ जाते हैं, उसका सुधर्म ही आ जाता है,
खुद को
उसका देश ही रहने आ जाता है, बस उसी स्वरूप में बैठते, बस मैं आत्मा। लंबे समय तक फिर इंटरेस्ट बैठने लगे तो पहले अनुभव नहीं होगा, कई दिन तक आपको नहीं, माना हमको अनुभव ही नहीं होगा ये, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। इस बॉडी कॉन्शियस में आत्मा इतनी चिपक गई है कि हर संकल्प के साथ बॉडी की कॉन्शियस से जुड़ी हुई है, इससे निकल ही नहीं पाते हम, एकदम जैसे चिपक गई है, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा ने क्यों इतने प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, प्राण आत्मा, प्राण आत्मा। हमारा जब तक ये पहला पाठ पक्का नहीं है तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार तो सब आत्मा के अंदर ही भरे हुए हैं ना। ये बॉडी तो एक सेकंड में चेंज हो जाएगी, जब हमको पता चल जाएगा कि हाथ आग में हाथ डालने से मेरा हाथ जलता है, मैं दोबारा क्यों डालूंगा? जब हमको पता हो जाएगा कि ये संकल्प करने से मेरा नुकसान है तो हम क्यों करेंगे फिर? लेकिन उस संकल्प को ताकत, संकल्प को एकाग्र करने की या उसको स्वीकार करने की ताकत जो पहले शक्तिशाली आत्मा होता तो करेगी ना,
नहीं तो जानते हो
मरीज ही कमजोर है और दवाई हाई डोज की दो तो क्या हाल होगा, वो सहन नहीं कर पाएगा, उसी अनुसार डोज देना पड़ता है। इसलिए लंबे समय तक वो आत्मा हूँ आत्मा हूँ बैठ गई तो अंदर की साधन है, चलते फिरते उठते दिखाई थोड़ा दे रहा है किसी को। जैसे उस दिन बाबा ने बोला, हमने सोचा था कि ये करेंगे, क्या बोला था कि 12 बार फरिश्ता 12 बार करो, नहीं होता इतना सहज ही। हमने एक दिन सोचा, एक दिन मना 8-10 दिन पहले जिस दिन बोला उस दिन से कि हमने उससे कैसे प्रैक्टिस करेंगे 12 बार फरिश्ता की प्रैक्टिस, अब बैठे बैठे 12 बार थोड़े सोचेंगे तो वो टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। तो हमने एक सोचा कि 12 बार हमारा कमरे से यहाँ, यहाँ से अंदर, अंदर से इधर, इधर से इधर 12-13 बार आना जाना हो जाता है, तो 12 बार भी हम सक्सेस नहीं हुए उसमें, कुछ 4-5 बार ही हमको याद रहा कि मैं फरिश्ता चल रहा हूं बस। कितने लंबे समय की प्रैक्टिस है ये,
टाइम कॉन्शियस होता
है नहीं, वो टाइम कॉन्शियस, वो बैठ के टाइम कॉन्शियस होते हैं, ये चलने में टाइम कॉन्शियस नहीं है। कम से कम यहां से मैं कमरे तक जा रहा हूं तो मुझे फरिश्ता बनके चलना है, लेकिन वो भी स्मृति नहीं आती क्योंकि आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, सीधी सी बात
तो है।
आएगी थोड़ी 2 सेकंड के लिए अंत में आएगी जब घर में पहुंचेंगे, क्योंकि तो आदत नहीं, प्रैक्टिस नहीं। तो प्रैक्टिस 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 से छोड़नी नहीं है कभी उनको। तो ये सारी मुरली थी, भाव ने आज विशाल बुद्धि की निशानियां बताई। मिलन कैसा है? रूहानी मिलन है, विचित्र मिलन है। कौन कौन किससे मिल रहा है? सर्व स्नेही बाप, सर्व स्नेही बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं, उसमें सर्व स्नेह का सागर मिल रहा है उनसे। विधाता प्रदाता बाप मिल रहा है, ये रूहानी मिला है, विचित्र मिलन है, वरदानी मिलन है, वरदानी इसमें संगमी को ही वरदान है। बाप और बच्चों का मिलन सारे कल में ये मिलन हो ही नहीं सकता, केवल अभी अनुभव कर सकते हो। फिर बाप और बच्चों की विशेषताएं, बोले बच्चे हैं साधारण है लेकिन दुनिया की नजरों में क्या है और बाप की नजरों में क्या है, और बाप की विशेषता क्या है कि ना उम्मीदवार आत्मा में उम्मीद पैदा करना है। तुम बोले बच्चे हो, साधारण बच्चे, लेकिन तुमने पा लिया, और वो संसार वाली आत्माएं अभी भी इंतजार में है, परखने में लगी हुई है,
समय
गवा रही है। फिर बाबा ने स्मिता का अनुभव कराने के लिए बताया, फिर गोल्ड रिबन की तैयारियों के बारे में बीच में बताया, विशाल दिल विशाल रूप विशाल तैयारी हो रही है उसके लिए, भाषण की बात कही, भोजन की बात कही, निमंत्रण की बात करेगी कि वो ड्यूटियां करनी है। भाषण तो सभी नहीं करेंगे, लेकिन जहां भी बैठते हो, भले आप किसी भी देश में दूर भी बैठे हो, लेकिन हर एक ऐसा नहीं सोच रहे कि हम वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कहां भी बैठे हो सबके प्रति, चाहे एक ही स्थान पर बैठे हैं संसार में, जितने भी सेवा केंद्र में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं सबको साकार देना है, क्योंकि हम एक सेंटर से नहीं बंधे हुए, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो बाबा ने कहा बेहद में रहो, बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराना ही सफलता का साधन है। तो इस गोल्डन जुबली की तैयारियां थी, इसमें स्मिता का अनुभव इसमें आया, उसमें 2 एग्जाम्पल बताए। एक तो बताया कि दूर बैठे हुए जैसे VIP संदेश भेजते हैं, तो ऐसे क्या तुम दूर बैठे ही नहीं कर सकते, तुम कम हो क्या? और दूसरा रॉकेट की बात बताई, एक से देश से दूसरे देश करते हो तो तुम भी ऐसे शुभ भावनाएं कामनाएं भेजो, ये बात होगी। फिर मोहब्बत से मेहनत करो, ये बात होगी। फिर 4 जोन से मिले बाबा, महाराष्ट्र से मिले, राजस्थान, दिल्ली, विदेशों से मिले। तो विदेशियों को कहा जैसे संसार में भय का वातावरण है, माहौल है, तो उनको खुशी की लहर का अनुभव कराओ, सारे खुशी के प्रकंपन फैलाओ, उनको अनुभूति हो। तो ये विदेशियों को बोला। फिर ये 3 जोन को पूरे विशेष आत्माओं को निमित्त बनाओ, नहीं तो ऐसे भी सोच रहते हैं कि आत्माओं को विशेष निमित्त बनाएंगे, आते आते समय होता है फिर साधारण आत्माओं को ले आते हैं, इसलिए विशेष आत्माओं को लाने पर ये फायदा होगा कि एक विशेष आत्मा अनेक आत्माओं को ले आएगी, तो इस पर ध्यान रहे। फिर बाबा ने शायद कुमारियों से बात की, कुमारियों को बोला निर्दोष जीवन है, एवरेडी जीवन है, कुमारी जीवन अर्थात शक्तिशाली जीवन है, नंबर 1 पढ़ाई का लक्ष्य रखना है और अपनी जीवन से पाठ पढ़ना है, ये टीचर ही, ये जीवन ही टीचर बन जाए, दूसरों को पढ़ाए है। और इसमें एक एग्जांपल बताया रेडियो का और टेलीविजन का, तो ये थी। फिर था वरदान, बालक और मालकपन का बैलेंस, जितना बालक का नशा उतना मालकपन का नशा, सर्व जनों से संपन्न बनाएंगे। और स्लोगन अधिकार और अधीनता की बात,
ज्ञान की अधिकार अधिकारी बनो तो
अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे मूल्य थे, फिर भी बहुत सारे पॉइंट छूट गए, कितने प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और अभी हमको इतना समय मिलता है, 10:30 10:15 हो गए।
ओम शांति।